पृष्ठ संख्या 215, अध्याय 24, घराने तथा बाज। हेडिंग है घरानों की आवश्यकता। आज बहुत से कलाकार एवं आलोचक ऐसे विधान करते हुए पाए जाते हैं कि घरानों की आवश्यकता नहीं है, घराने नष्ट हों तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, घराने के कारण लाभ की अपेक्षा नुकसान ही अधिक हुआ है, घराने धीरे धीरे लुप्त होते जाएंगे इत्यादि। तबले के बारे में विचार करते समय अगर हमने प्रथमतः तबले के विविध घरानों के निकषों की जांच करें तो निम्नलिखित बातें ध्यान में आ जाएंगी। अ, मुख्यतः उंगलियों से कला को प्रस्तुत करने वाले दिल्ली और अजराणा बाज, पेशकार, कायदा और रेले के रचनाओं को बजाने में अत्यंत लोकप्रिय बन गए हैं। चाट पर नजाकत के साथ बजाने के लिए हाथ रखने के विशिष्ट ढंग की जरूरत होती है और उस ढंग से रियाज करने पर पेशकार, कायदा, रेला आदि रचनाएं प्रभावात्मकता के साथ प्रस्तुत की जा सकती हैं। ब, पूरब और पंजाब शैली का जोरदार तबला बजाने के लिए लय का, स्याही का, 2 से अधिक उंगलियों का और पंजों का इस्तेमाल करने की आवश्यकता होती है और वह तबला प्रभावपूर्ण ढंग से बजाया जा सके। इसके लिए हाथ के अलग रखाव से रियाज करने की आवश्यकता होती है। पृष्ठ संख्या 216। इस प्रकार के 2 स्वतंत्र रियाजों के माध्यम से बने हुए हाथ के रखाव बिल्कुल अलग बन जाते हैं। तबले पर अक्षर निकालने के तरीके अलग हो जाते हैं और इन्हीं कारणों से इच्छा होते हुए भी दिल्ली अजराणा के बहुत सारे तबला वादकों को प्रभावात्मकता के साथ पूरब अंग के गत टुकड़े पूरब ढंग से बजाना नहीं आता और पूरब शैली के बहुतांश वादक दिल्ली के कायदे दिल्ली घराने के अंग से नहीं बजा सकते। क, तबले के घरानों की जो विविध शैलियां निर्माण हुई उनके माध्यम से तबले के विविध वादन प्रकार, पेशकार, कायदा इत्यादि सुलभ रूप में एवं परिणाम कारकता के साथ बजाए जा सकते हैं। तबले के घराने नष्ट होने या करना कहने का उद्देश्य क्या हो सकता है, उसका क्या मतलब हो सकता है, इस पर हम विचार करें। पहला, हाथ के एक ही प्रकार के रखाव से सभी वादन प्रकार सक्षम रूप में बजा सकना। मेरी राय में कोई भी कलाकार इस तंत्र से परिणाम कारक तबला वादन नहीं कर सकेगा, क्योंकि हाथ का खास रखाव विशिष्ट शैली के लिए ही उपकारक सिद्ध हो सकता है, तो दूसरी शैली के तबला वादन के लिए हानिकारक साबित हो सकता है। दूसरा, एक घराने की रचना दूसरे घराने की शैली से बजाना। मुझे नहीं लगता कि एक घराने की रचना दूसरे घराने की शैली से बजाना परिणाम कारक होगा, क्योंकि हर घराने की शैली में संबंधित रचना का सौंदर्य उसके विशिष्ट निकास में छिपा रहता है। फर्रुखाबाद की खुली जोरदार गत नजाकत के साथ चाट पर बजाई जाए तो मुझे नहीं लगता कि वह वादन प्रभावकारी सिद्ध हो सकेगा। तीसरा, हर एक घराने का तबला बजाया जा सके इसलिए संबंधित घराने के हाथ के रखाओं को एक ही कलाकार आत्मसात करे और अपनी कला को प्रस्तुत करे। यह विधान तात्विक एवं वैचारिक दृष्टि से ही है, परंतु व्यवहार में उसे अमल में लाना लगभग असंभव है। अब तक सुने हुए मेरे अनेक कलाकारों में इस कर्तव्य को साध्य किए हुए एक कम एव कलाकार हैं उस्ताद अहमद जान थिरकवा। मेरी राय में वे एक अपवाद थे। इसका मतलब यह नहीं कि इस प्रकार का तबला वादन किया ही नहीं जाए। प्रत्येक विद्यार्थी को अपने बचपन से ही दिल्ली अजराणा पूरब इत्यादि बाजों के अनुरूप हाथ के रखाव की शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। चाट और खुला बाज दोनों की शिक्षा धीरे धीरे उसे ग्रहण कर लेनी चाहिए। पृष्ठ संख्या 217। चौथा, तबले में केवल निकास की शैली से घराने बन गए हैं। यह कथन सत्य नहीं है, बल्कि सभी घरानों की अलग अलग कुछ स्वतंत्र बौद्धिक विचार क्रियाएं होती हैं। जब एकाध कलाकार सभी घरानों का तबला बजाना चाहता है, तब उसे अलग अलग घरानों की स्वतंत्र विचार क्रिया भी आत्मसात करनी पड़ेगी। यह सब काम शारीरिक और बौद्धिक दृष्टया बहुत कठिन है। पांचवा, सबसे अंतिम और महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि प्रत्येक विद्यार्थी के संस्कार, रुचि, अभिरुचि, ज्ञान, कौशल, आत्मसात करने की कला आदि सब विभिन्न होने से तबले के सब घराने उसे समान रूप में पसंद आए और वह सब घरानों का तबला प्रभुत्व के साथ बजा सके, यह असंभव है। इसीलिए तबले के घराने नष्ट होने चाहिए। जो पसंद आए वह बजाया जाए। प्रत्येक कलाकार सब घरानों का तबला बजाए आदि सब विचार तात्विक स्तर पर ही रह जाते हैं। आगे तबले के वर्तमान सभी महत्वपूर्ण घटनाओं का परिचय दिया गया है और अंत में उस घराने की शिष्य वंशावली के तख्ते संक्षिप्त रूप में दिए गए हैं। पहला, दिल्ली घराना। ऐसा माना जाता है कि पंजाब घराने को छोड़कर अन्य सब घराने रक्त के नाते से अथवा गुरु शिष्य के रिश्ते से दिल्ली घराने से प्रत्यक्ष और या परोक्षतया संबंधित हैं। यद्यपि प्रत्यक्षतः सभी घरानों की वादन शैलियां भिन्न भिन्न होती हों, तो भी यह माना जाता है कि वे घराने तबले के दिल्ली घराने में से निर्माण हुए। दिल्ली घराने के आद्य वादक उस्ताद सिद्धार्थ खान ने तबला वाद्य की निर्मिति की है, ऐसा भी माना जाता है। और अध्याय क्रम एक में तबला वाद्य की निर्मिति इस विषय के बारे में विस्तृत चर्चा की गई है। उस्ताद सिद्धार्थ खान और उनके वंशजों ने तबले की ऐसी स्वतंत्र शैली का निर्माण किया जो पखावज के प्रभाव से पूर्णतः मुक्त हो गया। कदाचित सिद्धार्थ खान के घराने के पूर्वज डुक्कड़ जैसा वाद्य बजाया करते थे। पृष्ठ संख्या 218। यह वाद्य मुख्यतः दो बर्तनों का बनता था और इस वाद्य के निकास में विविध ध्वनियां निकालने के लिए किनार का उपयोग ज्यादा होता था। इस वाद्य की शैली का परिणाम दिल्ली बाज की वादन शैली पर हुआ होगा। फलतः अत्यंत महत्वपूर्ण चाट का उपयोग दिल्ली घराने में होने लगा। किम बहुना आगे चलकर यह समीकरण ही बन गया कि दिल्ली घराने का बाज यानी चाट का बाज। दिल्ली घराने की वादन शैली और वैशिष्ट्य। इस घराने की बहुतांश रचनाएं मध्यमा और तर्जनी इन दो उंगलियों से तबले पर बजाई जाती हैं, अर्थात तिरकिट का ट अथवा ड अक्षर दिल्ली घराने में अनामिका और कनिष्ठा इन दो उंगलियों के संयुक्त आघात से बजाया जाता है। दिल्ली बाज में ट अक्षर मध्यमा से बजाने की पद्धति उतनी ही रूढ़ है। इस घराने के कुछ विद्वानों के दृष्टि में कदाचित ट अक्षर की ध्वनि ती अक्षर की ध्वनि की अपेक्षा भिन्न हो, अतः ट अक्षर अनामिका की मदद से बजाया जाता होगा। मेरी राय में दिल्ली घराने में तिरकिट तिरकिट अक्षर दो बार बजाए जाने की पद्धति रूढ़ है और इस ट को मध्यमा से ही बजाया गया तो दूसरे तिरकिट का ती तुरंत मध्यमा से ही बजाना पड़ेगा और ऐसा करने में हाथ अड़ जाता है। यह ध्यान में रखकर तिरकिट तिरकिट बिना रुके गतिमानता के साथ बजाया जा सके, इस उद्देश्य से ट अक्षर को अनामिका की सहायता से बजाने की परंपरा दिल्ली घराने में कुछ उस्तादों ने शुरू की। अजराड़ाबाज में अनामिका का उपयोग प्रमुखतः गतिमानता पैदा करने के लिए किया जाता है और उस घराने की रचना में आए हुए चार्ट पर के लगातार अक्षरों में से पहला ता अनामिका से बजाने की पद्धति हम देखते ही हैं। संभवतः वादन में ट अक्षर के निकास के लिए अनामिका उंगली के प्रयोग का उद्देश्य भी गतिमानता बढ़ाना एवं ध्वनि विविधता पैदा करना होगा। अर्थात तिरकिट का ट अनामिका से बजाने के अपवाद को छोड़ दें तो दिल्ली घराने में लगातार आए हुए दो ता या ना तर्जनी से ही बजाने की प्रथा है। फरुखाबाद, अजराड़ा और दिल्ली, इन तीन घरानों में लगातार आए हुए दो ता इस प्रकार बजाए जाते हैं। उदाहरण, धाती धागे दीना केना। फरुखाबाद में ना ब से, धा अ से। दिल्ली घराने में ना अ से, धा अ से। अजराड़ा घराने में ना क से और धा अ से। स्पष्टीकरण, अ बराबर तर्जनी, ब बराबर मध्यमा और क बराबर अनामिका। पृष्ठ संख्या 219। दूसरा, कोई भी रचना एक गुना बजाई जाते समय जिन उंगलियों से तबले के जिन स्थानों पर निकास किया जाता है वे ही उंगलियां और वे ही स्थान दुगुन या चौगुन में रखने का आग्रह दिल्ली घराने में रखा जाता है। इस आग्रह के फल स्वरूप दो परिणाम निकले हुए पाए जाते हैं। पहला, रचना की प्रस्तुतिकरण में गतिरोध पैदा होता है और दूसरा, इस प्रस्तुतिकरण में गतिमानता लाने का प्रयत्न किया जाए तो वह प्रस्तुतिकरण सुरीला संगीतमय नहीं रह सकता। दिल्ली वादन शैली में गतिमानता का आग्रह रखने पर सौंदर्य हानि होती हुई हम देखते हैं। इन परिणामों का एहसास रखने वाले दिल्ली घराने के ज्येष्ठ तबला वादक गतिमानता का पल्ला छोड़कर मध्य लय में ही तबला बजाया करते थे। संक्षेप में, दिल्ली घराने का तबला सर्वसाधारणतः मध्य लय में प्रभावपूर्ण ढंग से एवं परिणाम कारक रीति से प्रस्तुत किया हुआ हम पाते हैं। माना जाता है कि तबले की रचना में साहित्य है, काव्य है। वह काव्य शक्ति तबले की रचनाओं में विविध शब्दों की ध्वनियों में संग्रहित हुआ करती है। ऐसी शक्ति नादों के अनुप्रास में उन नादों द्वारा निर्मित तुकों में संचित हुई होती है। उन शब्दों को वजन होता है, रूप होता है और जब वे व्यक्त होते हैं तब मानवीय शब्दों की ही तरह बाएं की सहायता से वे श्वासों एवं उच्छावासों से अलंकृत हुए होते हैं और इन सब का एहसास एवं प्रतीति श्रोताओं को मध्य लय में प्रस्तुत किए गए वादन के माध्यम से सहजता से और स्पष्ट रूप में हो सकती है। इसका एहसास इस घराने के वादकों को हो चुकने के कारण दिल्ली घराने का वादन मध्य लय में ही उगा। फूलों हलु से लदकर बढ़ा एवं विकसित हुआ। लय जितनी धीमी हो उतना ही नाद की विविध बारीकियां अधिक स्पष्टतः एवं प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करना आसान होता है। यह जानकर पेशकार वादन धीमी लय में करना और कायदे मध्य लय में बजाना दिल्ली घराने के वादकों ने पसंद किया। तीसरा, बाएं पर का निकास इस घराने में निम्नानुसार किया जाता है। गे या घे, निकास मध्यमा अनामिका के घुमारे की सहायता से। घे गे या गे घे, ये दो लगातार के अक्षर मध्यमा और अनामिका द्वारा पहला घे और तर्जनी से बजाया हुआ दूसरा गे इस पद्धति से बजाए जाते हैं। कुछ रचनाओं में इन उंगलियों के क्रम का उल्टा प्रयोग भी किया जाता है। गे घे अक्षरों में से पहला गे अगर ह्रस्व हो तो उसे तर्जनी से बजाकर दूसरे घे को मध्यमा और अनामिका से बजाया जाता है और वह दीर्घाकार एवं खुला होता है। के या की अक्षर मुट्ठी को ढीलेपन से बंद करके बाएं पर आघात करके बजाया जाता है। सर्वसाधारणतः इस घराने में पंजे से हथेली की उंगलियों को फैलाकर निकाले गए के अक्षर का उपयोग कम होता है, किंतु अब यह बंधन पर्याप्त शिथिल हो रहा है। चौथा, तबले और बाएं पर के अक्षरों के निकास की जो पद्धति बताई गई है उससे यह बात ध्यान में आ जाएगी कि यह निकास पखावज पर बजाए जाने वाले अक्षरों की अपेक्षा अत्यंत निराला है। इसीलिए कहा जाता है कि दिल्ली घराने का बाज पखावज के प्रभाव से पूर्णतः मुक्त है। पांचवा, हथेली का उपयोग किए बिना केवल उंगलियों से बजाने की निकास पद्धति के कारण संभवतः तबले के अक्षर मृदु और मधुर जाति के बन जाते हैं। चांट की गूंज युक्त सांगीतिक ध्वनि और उसके विरोध में तिट अथवा तिरकिट इन तबले पर के गूंज और बाएं पर के घुमारे विरहित बजे हुए बंद अक्षरों के कारण विरोधी ध्वनि संवादों की भाषा में नाजुक नाद विविधता के सौंदर्य सूत्र की अनुभूति श्रोताओं को प्राप्त होती है। छठवां, इस घराने में प्रमुखतः पेशकार, कायदा, रेला आदि वादन प्रकार प्रस्तुत किए जाते हैं। इन वादन प्रकारों में बजने वाली रचनाएं विस्तारक्षम होती हैं और कई बार मूल रचनाएं सादी, आसान एवं आकार में छोटी होती हैं। इन रचनाओं में बहुत से विस्तार बीज छिपे रहते हैं। उन विस्तार बीजों का अंकुरण और उनका विस्तार का मार्ग खुला हो जाने पर एक के बाद एक पलटों के रूप में वह रचना सुलझती जाती है, विस्तारित की जाती है। उस रचना में अंतर्भूत अलग अलग आकारों एवं आशय के शब्द समूहों का विभाजन और पुनः अलग सूत्रों से की गई उनकी जुड़ाई के फलस्वरूप विस्तार के लिए अनेक मार्ग निर्माण होते हैं। अनुनासिक ध्वनियों की लयबद्ध पुनरावृत्ति अंत्य तुक एवं उपांत्य तुक का प्रभावात्मक उपयोग शब्दों की उलट पुलट फलतः कभी कभी जानबूझकर की जाने वाली खंडों की उलट पुलट आदि के फलस्वरूप सुंदर काव्य निर्मिति होती है और ऐसी काव्य निर्मिति करने का कर्तव्य दिल्ली घराने में विशेष तौर पर किया जाता है और ऐसा प्रतीत होना दिल्ली घराने के आंतरिक वैशिष्ट्यों का प्रमुख निकष है। सातवां, तबला वादन में जो सौंदर्य निर्माण होता है वह अलग अलग अंगों से हुआ करता है, किंतु मेरी राय में अत्यंत प्रभावी सौंदर्य थाली भरी के सूत्र से निर्माण होती है। काव्य का एकाध शब्द, शब्द समूह अथवा पंक्ति बहुतांश में बाएं के घुमारे की सहायता से बजती है। ऐसी पंक्ति को हम भरी युक्त कहते हैं, किंतु श्रोताओं के मन में पूर्णतः जड़ पकड़ी हुई खाली भरी की संकल्पना के कारण भरी युक्त पंक्ति के बाद खाली युक्त शब्द प्रयोग की अपेक्षा निर्माण होती है। भरी के आते ही खाली आनी ही चाहिए और खाली के बाद भरी आएगी, ऐसा गमन प्रत्यागमन पंक्ति का अपेक्षा पूर्ति का खेल सौंदर्य निर्मिति पैदा किया करती है। पृष्ठ संख्या 221। और इस सूत्र का अत्यंत प्रभावपूर्ण उपयोग दिल्ली घराने में किया जाता है। दिल्ली घराने में भरी युक्त शब्द समूह में अगर कुछ शब्द एक की अपेक्षा अनेक बार आ जाए तो भरी के चालू होने के दौरान ही वे शब्द उलट पुलट कर खाली भरी में बजाकर सुखद अपेक्षा भंग का आनंद श्रोताओं को इस घराने के वादन में प्राप्त करा दिया जाता है। उदाहरण के लिए यह धातीट कायदे का पलटा देखें। धातीट धा तीट धा धा तीट धागे दीना केना। पलटा धातीट धातीट धाधा धातीट धाधा धातीट। और कायदा, इस पलटे में घराने की तालीम अच्छी तरह से प्राप्त किए हुए वादक खाली भरी के तत्वों से परिवर्तन करके वही पलटा इस ढंग से बजाएंगे। धातीट धातीट धाधा धातीट ताता तातीट। और कायदा, तातीट तातीट ताता तातीट धाधा धातीट। और कायदा। आठवां, इस घराने की रचनाएं मुख्यतः चतरस जाति की हैं, किंतु तीसरे जाति की रचनाएं भी इस घराने में निर्माण की गई हैं और वे उपयोग में भी लाई जाती हैं। अत्यंतिक गतिमानता को रोकने वाले शब्द दिल्ली घराने की कायदे की रचना में जानबूझकर प्रयुक्त किए गए हैं। सर्वसाधारणतः ये शब्द यानि उस रचना के स्वरमय अंत्यपद हैं। दिल्ली घराने में गति रोकने के अथवा मध्य लय में तबला वादन प्रस्तुत करने का उद्देश्य यह भी माना जाता है कि अगर तबले की वे रचनाएं काव्य हैं तो वह काव्य तबले पर बजाते समय तबले के माध्यम से ही व्यक्त होता है। और अगर यह काव्य इस प्रकार प्रकट किया जाता हो तो मानवीय भाषा की मिलीजुली लय में ही प्रकट होता है। और मानवीय भाषा में विशेषतः काव्य भाषा में शब्दों के वजन के उतार चढ़ाव, श्वास उच्छावास, अल्प विराम, अर्ध विराम आदि सबका उपयोग करके वक्ता या कवि अपने विचार व्यक्त किया करता है। पृष्ठ संख्या 222। दिल्लीबाज में इन अल्प विराम अर्ध विरामों का भी उपयोग इसी ढंग से समर्थता के साथ किया जाता है। उदाहरण के लिए कायदे में विशेषतः धा अक्षर पर लिए गए विराम, इसे यति शब्दालंकार कहते हैं। दसवां, इस घराने के बहुत से वादक पारंपरिक विचारों और अनुशासनबद्ध आचारों के हैं। अजराड़ा, पूरब और बनारस घरानों में बाएं पर माधुर्य पैदा करने के लिए घिसाव के काम का कलात्मक उपयोग किया जाता है। इसी कारण तबला वादन में स्वर विविधता पैदा करने में पर्याप्त मदद मिलती है और वह कर्ण मधुर एवं संपन्न बनता है। दिल्ली घराने को ऐसा घिसाव का काम बिल्कुल मान्य नहीं है। उनकी दृष्टि में मात्र कलाई से बाएं को दबाकर और खुला छोड़कर जो ध्वनि विविधता निर्माण होगी वही स्वीकारणीय है। बाएं पर हाथ रखने पर उस हाथ को उठाना, आगे पीछे लेना दिल्लीबाज को मान्य नहीं है। उनकी राय में तबला केवल तबले की ही तरह बजना चाहिए, बाएं को घिसना उनकी प्रामाणिक दृष्टि से ढोलक की नकल है। 11वां, श्रेष्ठ लोकप्रिय तबला वादकों का तबला वादन सुनते समय यह ध्यान में आता है कि उनके वादन के पूर्वांग में यानी पेशकार कायदा रेले में प्रमुखतया दिल्ली बाज का इस्तेमाल किया जाता है, तो उत्तरांग में अर्थात मध्य लय में प्रस्तुत किए गए तबला वादन में मुख्यतः विविध प्रकार के गत टुकड़ों का उपयोग किया जाता है। फलतः तबले के अधिकारी लोग यह अनुमान निकालते हैं कि दिल्ली बाज स्वतंत्र तबला वादन के पूर्वांग के लिए अधिक सुविधाजनक है, परंतु दिल्ली घराने के कुछ विलक्षण प्रतिभावान रचनाकारों एवं तबला वादकों को वह विचार संभवतः पसंद न आया हो। उन्होंने दिल्ली वादन शैली में ही कर्ण मधुर गतें, लड़ियां, छोटे छोटे टुकड़े और मोहरे इतने सुंदर रूप में बांधे हैं कि जिनकी कोई तुलना नहीं है। उस्ताद इनाम अली दिल्ली घराने के गतें और लड़ियां अत्यंत सुंदर एवं प्रभावी ढंग से बजाया करते थे। इस ढंग से पेशकार से लेकर गत तक का तबला दिल्ली वादन शैली में प्रस्तुत करना उनका जीवन लक्ष्य था। तबला वादन में कितनी भी ध्वनि विविधता निर्माण की जाए तो भी वह प्रमुखतः एक सूरा वादन ही है। फलतः एक रस्ता वाले नाद निर्माण करने वाली विविध रचनाओं एवं उनके विस्तारों से यद्यपि विभिन्न रचना कृतियां तैयारी में बजाई जाएं, तो भी सच तो यह है कि श्रोताओं को एक ही नाद की पुनरावृत्ति से युक्त ऐसी रचनाओं से वादन नाविन्य का आनंद प्राप्त नहीं हो सकता। पृष्ठ संख्या 223। बल्कि केवल एक ही शैली में किया हुआ वादन भले ही नया और सुंदर भी क्यों न हो, तो भी कुछ समय के बाद उबाने वाला होने की संभावना ज्यादा होती है। खुले हाथ का पूरब या बनारस घराने का तबला भी अगर हम घंटे के घंटे सुनने लगें तो उससे भी उब जाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। इसलिए दिल्ली और पूरब दोनों बाजों का समतोल एवं विविध नाद ध्वनियों का आनंद देने वाले उस्ताद अहमद जान थिरकवा का संपूर्ण तबला अत्यंत श्रवणीय लगता था। अर्थात थिरकवा खां साहब का तबला श्रवणीय लगने के और भी अनेक कारण हैं, किंतु सबसे महत्वपूर्ण कारण है उनके वादन में निहित दिल्ली और पूरब का असामान्य समन्वयक।